वहीं दूसरी तरफ राजमहल में पल्लवी काफी ज्यादा परेशान थी और उसके हाथ में उसका फोन था। वो बार बार नरेंद्र को फोन कर रही थी। नरेंद्र ने पल्लवी का फोन उठाया और उसे डांटते हुए कहा, क्या बात है पल्लवी, आप हमें बार बार फोन करके परेशान क्यों कर रही हैं? हमने आपसे कहा था ना, हम आज बहुत ज्यादा बिजी हैं, हम आपसे बात नहीं कर सकते हैं। नरेंद्र की बात बीच में काटते हुए पल्लवी ने कहा, लेकिन बात करना बहुत जरूरी है, आप समझ नहीं रहे, प्लीज हमारी बात सुनिए। नरेंद्र ने पल्लवी को डांटते हुए कहा, जो भी बात है हमें घर पर बताना, अभी फोन रखें। इतना बोलकर नरेंद्र ने कॉल कट कर दिया। वहीं पल्लवी ने परेशान होते हुए कहा, पता नहीं क्यों नरेंद्र हमारी किसी भी बात को सीरियसली क्यों नहीं लेते। पल्लवी काफी ज्यादा गुस्से में थी और उसने अपना फोन वहीं बिस्तर पर ही फेंक दिया और वहीं सोफे पर अपना सर पकड़कर बैठ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, हो ना हो ये सब कुछ भाभी सा का ही किया धरा है, वरना हमारे अभिनव के लिए लड़की ढूंढना इतना ज्यादा मुश्किल तो नहीं होना चाहिए था। वो सारी बातें सोच ही रही थी कि थोड़ी ही देर बाद नरेंद्र कमरे में आया और उसने देखा पल्लवी अपने सिर पर हाथ रखकर बड़ी ही परेशान बैठी हुई है। नरेंद्र ने अपना कोट उतारकर बेड पर फेंकते हुए कहा, हमने सोचा था अभिमन्यु यहाँ नहीं है तो हम ऑफिस को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले सकते हैं, लेकिन ये अभिमन्यु का चमचा समर्थ, ये तो जैसे खुद ही हमारी कंपनी का मालिक बनकर बैठा हुआ है। नरेंद्र भी काफी ज्यादा परेशान लग रहा था, लेकिन सामने उसकी पत्नी ऐसे ही बैठी हुई थी। नरेंद्र की बात का भी उसने कोई जवाब नहीं दिया और जब उसने पल्लवी को इस तरह बैठे हुए देखा तो उसने पल्लवी के पास जाते हुए कहा, क्या बात है पल्लवी, अब आप इस तरह से इतनी परेशान होकर क्यों बैठी हैं, क्या बात है? पल्लवी ने जैसे ही नरेंद्र की आवाज सुनी उसने उसकी तरफ देखकर बड़ी ही घबराहट के साथ कहा, कितनी देर लगा दी आपने आने में, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे, आपको पता है यहाँ कितनी प्रॉब्लम हो गई है। पल्लवी की ये बात सुनकर नरेंद्र ने उसे हैरानी से बोलते हुए देखकर कहा, क्यों अब क्या हुआ? नरेंद्र इतना बोलकर आराम से सोफे पर बैठ गया। पल्लवी ने कहा, अब आराम से बैठने का टाइम नहीं है हमारे पास, आप हमारी बात को सीरियस क्यों नहीं ले रहे हैं? पता है हमने अभिनव के लिए लड़की ढूंढने के लिए कई सारे रॉयल फैमिलीज में बात की, लेकिन कोई भी राजघराना हमारे अभिनव के लिए अपनी लड़की देने को तैयार ही नहीं है। जैसे ही पल्लवी ने पूरी बात बताई अभिनव ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या क्या कह रही हैं आप, ऐसा कैसे हो सकता है भला, हमारे परिवार में कोई अपने घर की बेटी देने के लिए क्यों मना करेगा? पल्लवी ने परेशान होते हुए कहा, यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है, हमें तो लग रहा है इन सब के पीछे भाभीसा का हाथ हो सकता है। नरेंद्र गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, प्लीज पल्लवी बात बात में भाभीसा को बीच में मत लाया करो, तुम बेवजह ही उन्हें इतना ज्यादा क्रेडिट दे देती हो, हर चीज की कोई और वजह भी हो सकती है। पल्लवी नरेंद्र की ये बात सुनकर थोड़ा सोचते हुए बोली, और कोई क्या वजह हो सकती है, कहीं तुम्हारे जेल जाने की वजह से तो वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तुम अभी अभी जेल से छूट कर आए हो, तो शायद उन्हें ऐसा लग रहा हो कि हमारे बेटे से उनकी बेटे की शादी होने के बाद में खुश नहीं रहेगी। नरेंद्र पल्लवी को गुस्से से घूरते हुए देखने लगा, क्योंकि पल्लवी ने जिस तरह उसकी जेल वाली बात को उठाया था उससे उसका गुस्सा होना भी जायज था। पल्लवी नरेंद्र की गुस्से से भरी हुई आंखें देखकर थोड़ा सा डर गई, उसने जल्दी से अपनी नजरें नीचे झुका ली। इसी बीच अभिनव भी वहां पर आ गया। अभिनव को देखकर पल्लवी ने कहा, या तो फिर हो सकता है उन्हें इसी बात का यकीन ना हो रहा हो कि अभिनव हमारा ही बेटा है, क्योंकि जहां तक हमें लगता है किसी को भी इस बारे में यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। पल्लवी ये बोल ही रही थी कि तभी अभिनव हैरानी से उन दोनों की तरफ देखने लगा। तभी नरेंद्र ने थोड़ा सोचते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो लेकिन हम इस तरह से हार तो नहीं मान सकते, हमें अभिनव के लिए कहीं ना कहीं से किसी न किसी राजघराने की तो लड़की ढूंढनी ही होगी, क्योंकि अगर अभिनव की शादी नहीं हुई तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर अगर उसे कुछ मिलेगा ही नहीं तो हमारा तो सारा प्लान ही चौपट हो जाएगा। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। पल्लवी नरेंद्र की बात सुनकर बोली, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? नरेंद्र ने अपनी आंखें से कोरते हुए कहा, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, और जल्द से जल्द हमें इस एक महीने के अंदर ही अभिनव की शादी भी करवानी होगी। अभिनव चुपचाप उन दोनों की बातें सुन रहा था, वो दोनों उसी की ही शादी को लेकर काफी ज्यादा परेशान लग रहे थे। तभी अभिनव ने अपने मन में कहा, ये तो बड़ा अच्छा मौका मिला है, मैं तो इस बात का फायदा उठा सकता हूँ। इतना बोलकर अभिनव के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया और उसे सोचकर वो तिरछी मुस्कुराहट से मुस्कुराने लगा। वहीं मुंबई में इप्सिता अपने रूम में थी और डिनर के बाद वो चुपचाप अपने बेड पर आकर बैठी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में अभिमन्यु के लिए फिक्र सता रही थी, क्योंकि जिस तरह से आज अभिमन्यु की हालत बिगड़ी थी उसे देखकर इप्सिता के लिए उसकी फिक्र करना जायज था। वो अपने मोबाइल फोन की तरफ देखकर अपने मन में बोली, पता नहीं कैसे होंगे अभिमन्यु, क्या करें हम, उन्हें कॉल करें क्या? लेकिन क्या इतनी रात में हमारा उन्हें कॉल करना ठीक होगा? इप्सिता अभिमन्यु के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और वो उठकर बैठ गई। उसने अपना मोबाइल फोन उठाया और अभिमन्यु के नंबर के पास आकर उसका नंबर डायल करने जा ही रही थी, तभी उसने खुद को रोकते हुए कहा,
अरे नहीं, ये हम क्या करने जा रहे हैं? हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे अभिमन्यु को किसी भी बात की जरा भी होप मिले। अगर हमने उनका हालचाल पूछने के लिए उन्हें कॉल किया तो पता नहीं वो हमारे बारे में क्या क्या सोचने लगेंगे, और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। हमें भी उनके बारे में नहीं सोचना है। हम क्यों उनके बारे में सोच रहे हैं? जब उन्होंने हमारे बारे में नहीं सोचा, वो हमें इस तरह बीच मंडप में सबके सामने अकेला छोड़कर चले गए, तो फिर क्यों हम उनके लिए इतना सब कुछ सोच रहे हैं? इप्सिता इतना बोलकर चुप हुई और उसने अपना फोन वहीं साइड टेबल पर रख दिया और चुपचाप अपने बेड पर लेट गई। उसने दूसरी पिलो को कसकर पकड़ लिया और उसे हक करते हुए बोली, हम उन्हें कॉल नहीं करेंगे, और वैसे भी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। वैसे भी हमारे मिलने से पहले वो अपना ध्यान खुद ही तो रखते थे, हम थोड़े ना उनकी हालचाल पूछने जाते थे, तो फिर अब हम उनके बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? इप्सिता ने खुद से ही ये सारी बातें की। वो अपने सवालों का खुद ही जवाब दे रही थी। उसने सोच लिया था कि वो अभिमन्यु को ना ही कॉल करेगी और ना ही उसे कोई होप देगी। इप्सिता ने अपनी आंखें कसकर बंद की और वो सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी ही देर में उसे नींद भी आ गई। अगली सुबह जैसे ही इप्सिता की आंख खुली, वो नंदिनी के साथ सीधे स्टूडियो की तरफ निकली। स्टूडियो में ध्रुव पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। इप्सिता ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, ध्रुव, हमारा आज एक ही फोटोशूट है ना? ध्रुव ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी इप्सिता ने कहा, ठीक है, जल्दी कंप्लीट करते हैं, मैं आज यहाँ से थोड़ा जल्दी निकलूंगी। इप्सिता की ये बात सुनकर ध्रुव ने धीरे से अपना सिर हिलाया और उसे उसकी कॉस्ट्यूम देते हुए कहा, ठीक है, जाओ चेंज करके आओ। इप्सिता ने जल्दी जल्दी अपना शूट खत्म किया और वो शूट खत्म होते ही स्टूडियो से बाहर निकलने लगी। वो अभिमन्यु के बारे में ही सोचती जा रही थी। उसके दिमाग में कई सारे सवाल थे जो बार बार उसे परेशान कर रहे थे।
उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे इन सारी चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ अपने फ्यूचर पर फोकस करना है, और मैं अभी अपने करियर पर ध्यान दूंगी। मैं अभिमन्यु और किसी के बारे में भी कुछ नहीं सोचूंगी। इप्सिता इतना बोलकर स्टूडियो से बाहर निकली और उसने नंदिनी को मैसेज कर दिया और अपनी कार भी नंदिनी के लिए वहां स्टूडियो में ही छोड़ दी, और वो खुद कैब बुक करके सीधे बीच पर पहुंची जहां पर वो एक बार अभिमन्यु के साथ गई थी। इप्सिता उसी बीच पर पहुंची और वहीं बीच के एकदम किनारे वो अपने पैरों को फैलाकर बैठ गई। पानी की लहरें उसके पैरों से टकरा रही थी और इप्सिता चुपचाप बड़े ही शांति से समुद्र के पानी को बस देखती जा रही थी। वो काफी ज्यादा बेचैन थी, लेकिन जब वो वहां पर आराम से बैठी तो उसे काफी ज्यादा रिलैक्स फील हो रहा था। इप्सिता ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने धीमी आवाज में कहा, आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हम क्यों बार बार अभिमन्यु के बारे में सोचने लगते हैं? हम खुद को इतना संभालते हैं और सोचते हैं कि किसी तरह हम उनके बारे में ना सोचें, लेकिन हमसे ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्यों? हम क्यों उनकी इतनी फिक्र कर रहे हैं? 6 महीने बीत गए, उसके बावजूद भी क्यों हम आज भी अभिमन्यु के लिए अपने दिल में कहीं ना कहीं कोई सॉफ्ट कॉर्नर फील करते हैं? इप्सिता के दिमाग में जैसे ही ये बात आई, उसने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, ये सब हम क्या कह रहे हैं? हमें इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इप्सिता इतना बोलकर सामने की तरफ देखने लगी। तभी इप्सिता को अपने पीछे से एक बहुत ही जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी। किसके बारे में सोच रही हो और इतना परेशान होने का क्या मतलब है? आखिर बात क्या है? क्या हम पूछ सकते हैं कि यहां अकेले सबसे दूर बैठने का क्या मतलब है? टू बी कंटिन्यूड। क्या लगता है आप लोगों को, इप्सिता क्यों गई है उसी जगह पर जहां पर वो अभिमन्यु के साथ आई थी? क्या आज भी अभिमन्यु के साथ बिताए गए वो सारे पल उसके लिए इतनी ज्यादा स्पेशल हैं जिन्हें वो अक्सर याद करती रहती है? तो फिर इस बात को मानकर उसे माफ क्यों नहीं कर देती और एक मौका फिर से क्यों नहीं देती? और आखिर में कौन आया है वहां पर? कौन है जो उससे इतने सवाल कर रहा है? क्या खुराफाती आइडिया आया है अभिनव के दिमाग में?